आप सभी को अगर कोई पूछे कि आप कितने भाग्यवान हो तो आप क्या कहेंगे उत्तर में? अच्छा पद्मा पद्म भाग्यवान। दुनिया में ऐसा तो बोलना किसी को आएगा भी नहीं। वो पद्मा पद्म क्या है उनको पता भी नहीं होगा, है ना? नहीं, अच्छा पद्म पद्म गुणा भाग्यवान है। हम खाली भाग्यवान नहीं, सौ भाग्यवान नहीं, हजार भाग्यवान नहीं, लाख भाग्यवान नहीं, पद्मा पद्म भाग्यवान, है ना? नहीं, दुनिया में किसी को पूछो तो मेरे जैसे बदनसीब कोई नहीं, हम तो बहुत भाग्यहीन है। अपने को बहुत कैसे कैसे समझते हैं लोग, लेकिन बाबा का हर एक बच्चा कहता मैं पद्मावतम भाग्यशाली हूं। क्यों ऐसा नशा है? क्या मिला आपको ताकि आप पूरा पद्मावतम भाग्यशाली हो गए? अच्छा सब कुछ स्वयं भाग्य विधाता भगवान पिता के रूप में मिल गए। हमारे बाप हैं, अधिकारी हैं हम, और क्या चाहिए, है ना? नहीं, सबसे बड़ी प्राप्ति तो भगवत प्राप्ति, दुनिया में सर्वोच्च प्राप्ति भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो भगवान मिल गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली भाग्य बनना ही है। लेकिन भाग्य बनता कैसे है? हमें नशा तो चढ़ गया कि भगवान मिल गए, लेकिन भाग्य बनता है कैसे? जो हाँ, जो भगवान का कहना मानकर जीवन में पालन करता है उसको, श्रीमत को, वही भाग्यवान बनता है। खाली भगवान का बन जाने से भी भाग्यवान है। करोड़ों मनुष्य संसार में हैं जिनको भगवान का परिचय भी नहीं है, उनका जीवन तो जैसे पशु पंछी जानवर भी जन्म लेते हैं, खाते पीते मर जाते हैं, वो भी ऐसा ही है उनका जीवन। लेकिन जो भगवान को पहचान लिया वो भी भाग्यवान है। लेकिन पद्मा पद्म भाग्यशाली बनने का आधार है भगवान की श्रीमत को समझना और उनकी श्रीमत पर सदा चलना, प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतारना। खाली बन जाने से नहीं चलेगा। अगर खाली बाबा का बन जाने से हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ हो जाता तो सत्ययुग में सभी लक्ष्मीनारायण बन जाते। सत्ययुग में जाना भी कम भाग्य नहीं है, स्वर्ग में जाके पहुंचना भी कम भाग्य नहीं है। दूसरे तो स्वर्ग के द्वार तक भी नहीं जा सकते हैं। जब हम स्वर्ग का पूरा सुख लेके फिर जब आधा कल्प समय बीत जाएगा, बाकी धर्म वाले फिर आएंगे, हम स्वर्गिक सुख खा पी के पूरा खत्म करेंगे फिर आएंगे, वो है ना? नहीं, तो हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। बाबा दुनिया में हमारा जो भाग्य श्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान बन जाते हैं वो सफलता के सितारे हैं। उनका यादगार आज तक भी कितने गायन है। दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, है ना? नहीं, हर फील्ड में कोई भी हो जीवन में सक्सेस होना चाहता है। कोई भी क्यों ना हो, मैं सक्सेस बनूं जीवन में। सफलता मूर्त किसे कहेंगे, किसको सक्सेस कहा गया? मान लिए देखिए, आज कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से मेहनत करता है, पढ़ता है, बहुत अच्छा, वो मल्टी मिलियनर बन गया, बहुत पैसा कमा के धन संपत्ति का मालिक हो गया, लेकिन उसके घर में कोई संबंध में मधुरता नहीं, अनबन है, डेली घर में लड़ाई झगड़ा, और इधर उधर पैसा हेरा फेरी करके कमाया है, जो भी देखता है उसको छी छी थू थू करता है, क्या उसको जीवन में सक्सेस कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोई बहुत पढ़ाई करके यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन वो ऐसा ऑफिसर है जो कोई लाइक नहीं करता है, जहां भी जाता है सब उनको डिसलाइक करते हैं, समाज में भी जहां जाते हैं उसको कैसे नजर से देखते हैं, चरित्रहीन है, उसको सक्सेस कहेंगे? एक स्कूल का हेडमास्टर इतना अच्छा पढ़ाता है बच्चों को, इतनी पढ़ना देता है, सिंपल है, उसके पास कोई बंगलो नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, धोती कुर्ता पहन के आता है, पैदल आता है बेचारा। लेकिन कोई भी देखता है उसके सारे स्टूडेंट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, कहीं भी देखते हैं तो उसका पांव छूते हैं रास्ते में भी, तो उसको सक्सेस कहेंगे? भाई जी ना बोल रहे हैं। अच्छा, तो जीवन में सफल किसको कहेंगे? सफलता मूर्त कौन है? जो जीवन में, ठीक है, हर एक की चाहना अलग अलग है, जीवन में जो उसकी इच्छा है, चाहना है, उसकी हर चाहना पूरी होती है और वो लोकप्रिय है, उसके परिवार में भी सभी संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो उसको जीवन में सक्सेस कहेंगे। तो हम बाबा के बच्चे साधारण भले हो सकते हैं, है ना नहीं, परंतु दुनिया के हिसाब से देखा जाए साधारण बाबा का बच्चा भी हो लेकिन जीवन में तृप्त है, खुश है, संतुष्ट है, जितना है जो है, इसलिए हम सफलता के सितारे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा बनाता हूं इसलिए तुम इतने सक्सेस बनते हो जीवन में। हमको बनाने वाला कौन है? दुनिया वाले खुद मेहनत करते हैं या कोई भी मनुष्य मत पर चलकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, परंतु सिद्धि अल्पकालीन है और उसमें संपूर्ण सुख नहीं है। अभी सुन रहे थे कितना बाबा हमें, कितना हमारा श्रेष्ठ तकदीर जगा दिए, कितना सुंदर गीत सुन रहे थे। तो स्वयं भाग्य विधाता, हमारे तकदीर को जगाने वाला स्वयं भगवान है। तो भगवान हमें जो सिद्धि देते हैं वो अल्पकालीन नहीं है, वो सदाकाल के है। कल सभी अव्यक्त अवदादा की मुरली सुनी, सभी सुने होंगे। तो एक है सिद्धि, एक है सिद्धिदाता, एक है सिद्धांत, तीन शब्द है, सिद्धिदाता, सिद्धांत और सिद्धि। तो सिद्धिदाता है कौन? आज सिद्धि पाने के लिए दुनिया में जिसको भगवान का परिचय नहीं है वो कहां जाते हैं? किसी न किसी देवी देवताओं के पास जाते हैं। कोई संतोषी देवी के पास जाता है, कोई अंबाजी के पास जाता है, कोई गणपति को सिद्धिदाता समझता है, कोई हनुमान हनुमान करते हैं, कोई काली माँ करते हैं, कहीं भी देवी देवताओं के पास जाके कुछ न कुछ मनोकामनाएं, जो भी उनकी चाहना है पूर्ति हो जाए, इसलिए वो जाके भक्ति करते हैं। परंतु कोई भी देवी देवता आपको सब कुछ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण तो नहीं कर सकते, उनको भी ये सब कहां मिली है? और चैतन्य में तो है नहीं, उनकी जड़ मूर्तियां ही है, चैतन्य रूप में तो कोई है नहीं। वो मूर्तियों के पास जाके भावना का हम कुछ ना कुछ अनुभव होता है बस, बाकी तो जैसे चैतन्य में कोई हो साकार में और कुछ देता हो ऐसा तो है नहीं, उनके यादगार के रूप में है खाली, हम मूर्ति के पास जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो भी सिद्धि है, जैसे धन पाने के लिए, किसके पास धन नहीं है? मेरे पास पर्याप्त धन हो जाए समझते हैं, धन पाने के लिए, धन हो जाए तो मैं जीवन में सक्सेस हो जाऊंगा सोचते हैं। कोई पढ़ाई में एकदम होशियार हो जाए तो कहता है मैं सक्सेस हूं। कोई जीवन में, हर एक का लक्ष्य अलग अलग है और उसमें जब वो सिद्धि मिल जाती है कहते हैं आई एम सक्सेस इन लाइफ। किंतु लेकिन सफलता मुहूर्त किसे कहते हैं? बाबा हमें समझाते हैं, है ना नहीं। खाली जीवन में कोई प्राप्ति हो गई लेकिन बाकी सब जीवन का सब कुछ देखा जाए, भाग्यवान किसे कहा जाता है? भाग्यवान अर्थात उसको सब प्रकार का सुख प्राप्त हो, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, चारों प्रकार का सुख, तन मन धन जन कहा जाता है। वो चारों प्रकार का सुख आज दुनिया में किसी को है? इसलिए सबसे भाग्यवान तो देवी देवताएं हैं जिसको चारों प्रकार का सुख, स्वर्गिक सुख अनुभव होता है। इसलिए तो आज दुनिया में भले कोई अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है लेकिन ये चारों प्रकार का जीवन में है नहीं। और हम बाबा के बच्चे जब श्रीमत अनुसार चलते हैं, ये चारों प्रकार का हमें प्राप्ति होती है। अभी भी इस जीवन में भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है और इस जीवन में ही सर्व प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो बाकी जैसे कहीं बहुत एक होलसेलर दुकान है वहां सब कुछ अवेलेबल है, और रिटेलर कहीं छोटे छोटे शॉप है वहां सब नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो आप कहां जाएंगे? होलसेल दुकान में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही आज तक भक्ति में हम जहां भी भटकते थे, जहां भी जाते थे, थोड़ा बहुत कुछ मनोकामना पूरी होती थी, कभी नहीं भी होती थी। लेकिन अभी बाबा में मिलने के बाद ऐसा अनुभव होता है हमें, सब कुछ मिल गया, बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। तो जीवन में सिद्धि देने वाला, सिद्धिदाता भगवान है स्वयं, और हमको ऐसा सिद्धि स्वरूप बना देते हैं जिसका यादगार जड़ मूर्ति देवी देवताओं को हम आज तक हम देख रहे हैं, उनकी मंदिरों में मूर्ति रख के लोग मूर्ति के पास जाते हैं सिद्धि पाने के लिए, है ना? नहीं तो सिद्धिदाता कौन है? स्वयं भगवान। हमें जीवन में सदा सिद्धि स्वरूप सक्सेसफुल होके कैसे जीवन में हम एक जन्म नहीं अनेक जन्म जन्म जन्मांतर हम कैसे सफलता मूर्त बने, भाग्यवान बने, सुखी बने, बाबा हमें विधि बता देते हैं। तो जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए विधि बताने वाला परमात्मा स्वयं सिद्धिदाता है। कौन है वो? कौन है वो? को दुनिया वाले जानते नहीं है। वो है श्री बाबा। और बाबा हमें इतनी सहज युक्ति बताते हैं, सरल युक्ति बताते हैं, और इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव जी को कहा जाता है आशुतोष, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलानाथ है, वो जो मांगो दे देते हैं, उनको कोई जानते नहीं पहचानते नहीं। तो स्वयं परमात्मा जो अविनाशी है वो हमें सिद्धि दे रहे हैं, जिसके कारण हम एक जन्म नहीं आधा कल्प तक 21 जन्म पूरा माला माल हो जाएंगे, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी द्वापर युग से हमारी यादगार में भगत हमारी मूर्तियों से भी सक्सेस उनको मिलता है, तो सोचो हम कितने भाग्यवान बन जाते हैं। इसलिए कहा पद्मा पदम भाग्यशाली। जी जी। तो सिद्धिदाता है स्वयं परमात्मा, वो हमें कैसे सिद्धि देते हैं? कोई चीज तो है नहीं, लो भाई सिद्धि कैसे देंगे? बाबा हमें कुछ विधि बताते हैं, कुछ सिद्धांत बताते हैं, जिसके आधार से हम चलने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। कोई टीचर किसी को कुछ देता नहीं है, वो पढ़ाता है, फिर जो करता है, जो पढ़ता है वो पाता है। ऐसे ही भगवान कोई स्थूल चीज तो देते नहीं है। एक आपको एक हंसी की बात सुना देता हूं। लोग तो अनेक मनोकामना लेके भगवान के पास जाते हैं। एक शिवजी का भगत था, एक भोला भगत, जाके शिव मंदिर में जाके हाथ जोड़ के शिवलिंग के सामने कहता है, हे प्रभु आपकी असीम कृपा, क्या कहूं, मेरे पास सब कुछ हो गया, अभी आपके कृपा से बहुत अच्छा बंगलो हो गया, मेरे बच्चे भी सेटल हो गए, सब कुछ हो गया प्रभु, मैं जो चाहता था सब मनोकामना मेरी पूरी हो गई, खाली एक ही मनोकामना रह गई, मेरे पास गाड़ी भी हो गई, लेकिन एक गैरेज हो जाए तो बहुत अच्छा, गैरेज नहीं है, रास्ते में रखना पड़ता है गाड़ी को। तो भगवान कहते हैं, अरे बेटा मेरे पास गैरेज होता तो मेरे बैल को बाहर क्यों रखा हूं, अंदर नहीं रखता था कहीं मेरी गाड़ी को भी मैं बाहर रखा हूं तो भगवान के पास गैरेज है क्या? ऊपर से ले भाई गैरेज है कि ले ले। भगवान कोई हमको स्थूल चीज नहीं देते हैं, भगवान हमें ज्ञान देते हैं, विधि बता देते हैं, तुम ऐसे करोगे तो तुमको जीवन में सफलता मिलेगी, तुम्हारा भाग्य जगेगा। भगवान हमें विधि बताते हैं, इसलिए भगवान को विधि विधाता, भाग्य विधाता कहा जाता है, और हमको भी ऐसे विधि विधाता, भाग्य विधाता हमको भी बनाते हैं। जैसे एक बड़ा ऑफिसर अपना बेटा को भी ऑफिसर बना देता है, तो भगवान दुनिया में कोई गुरु गोसाई किसी अपने चेले चिमटे को मेरे जैसा बन जाने कहेगा तो सदा ही मेरे भगत होकर मेरे चेले होकर कहेगा, लेकिन यहां भगवान हर एक बच्चा को, चलो वो गुरु गोसाई कोई बनाएंगे तो उनका जो पट्टा शिष्य होगा उसको अपना गद्दी नसीन बना देंगे, बाकी सबको तो नहीं बना सकेंगे। यहाँ बाबा हम सभी को, एक एक को, सबको कहते मेरे समान बनो बच्चे, मेरे समान बनो। तो बाबा आप समान विधि विधाता भी बना देते हैं और सिद्धिदाता भी बना देते हैं। हम जीवन में सिद्धि स्वरूप खुद बन जाते हैं और हम दूसरों को भी सिद्धि दिलाने वाले मार्ग प्रदर्शक बन जाते हैं। तो इसलिए आज तक हमारी जड़ मूर्तियों के सामने भी भगत लोग जाते हैं, है ना? नहीं तो देखिए बाबा क्या ऐसी विधि बताते हैं जिससे हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाता है, इसको सिद्धांत कहा जाता है। और सिद्धांत में जो जितना अटल रहेगा उसका भाग्य का सितारा उतना चमकेगा, वो सितारा सफलता का सितारा बन जाएगा। वो सिद्धांत कितना कौन जीवन में एक जानने वाले, कल बाबा की मुरली याद है, जानने वाले सभी हो, जानने से खुशी होती है। हाँ शिव बाबा है भोलानाथ, वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जो वरदान मांगते हो दे देते हैं, जान लिए, पहले भगवान को नहीं जानते थे, जान लिए तो खुशी तो होती है। लेकिन अभी दिल से मानना पड़ेगा, मानना मना उनकी हर आज्ञा को मानना पड़ेगा, उनके हर श्रीमत को जीवन में, हाँ बाबा जो कहते हैं यही राइट है, कोई संशय नहीं हो मन में, ओ बाबा तो ऐसा कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी ना, बाबा ऊपर बैठा है बोलता रहता है, हमारे जैसा बने फिर पता चले, ऐसे भी बोलते हैं कई बाबा के भोले बच्चे। तो बाबा जो भी आज्ञा हमें देते हैं उसको मानना है, हाँ बाबा करके दिखाए, और उसको प्रैक्टिकल जीवन में जो फिर करके दिखाता है उसका भाग्य उदय होता है, वही सफलता का सितारा बनता है, वही सिद्धि स्वरूप बनता है। तो बाबा ने कल होमवर्क दिया था, याद है सभी को, बाबा ने दो सिद्धांत बताया, सिद्धांत बना जो हमारे ज्ञान के प्रिंसिपल्स है, जो हमारे नियम है, जो मर्यादा है, जो हमें करना ही है, उसमें अनाकानी नहीं चल सकता है, वो हमारा सिद्धांत है, हमारा मूल नीति है। तो हमारे विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा कि दुनिया में ऐसे यूनिवर्सिटी है नहीं, आज की साकार मूल्य में बाबा क्या कहा, ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं है नहीं जो सबका सदगति करा दे, है कहीं कोई पढ़ के कोई किसकी सदगति हो जाए, एक ही यूनिवर्सिटी है कि यहाँ हम सभी कहाँ दुर्गति में थे, दुर्गति माना जीवन में दुख अशांति रोग शोक पीड़ा, कैसे हालत दुनिया में देखो लोगों की कैसी है, खास तो अभी जो महामारी का समय चल रहा है चारों तरफ लोगों की अवस्था आप सभी को नहीं पता होगा क्योंकि आप इतने पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं भी आते होंगे, हम तो रोज लोगों की दुख भरी कहानी सुनते रहते हैं, किसकी नौकरी चली गई, किसका बिजनेस ठप हो गया, किसी के बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, कितनी समस्या लोगों की, और बीमारी इतनी दवाइयां इतनी समस्या, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी तो महाभारी महाविनाश सामने है, एक ही साथ पूरा सब प्रकार की बीमारियां, सब विकार, सब प्राकृतिक आपदाएं, आज भी बाबा ने कहा सफाई होगी सब, कैसा अभी समय आ रहा है, ऐसे समय पर कौन सक्सेसफुल होगे, जो सफलता के सितारे होंगे चमकेंगे विश्व के गगन में, सभी अनुभव करेंगे कि हाँ सचमुच ये आत्माएं कितने भाग्यवान है, हम कितने दुखी त्राही त्राही हाय हाय करते रहेंगे, हम बाबा के बच्चे वाह बाबा वाह करते रहेंगे, तभी सभी मानेंगे कि ये सचमुच सिद्धिदाता है, सिद्धि स्वरूप आत्मा है। आज भी ऐसे जो सक्सेस है विशेष हैं उनको स्टार कहते हैं, है ना, कोई क्रिकेट स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, उसको स्टार कहते हैं। लेकिन बाबा हमें इस विश्व नाटक का शुरुआत से लेकर अंत तक, सतयुग से लेकर अंत तक इस विश्व नाटक का हमको हीरो हीरोइन बना दिया। सबसे बड़ा स्टार कौन है फिर, हम ही है ना, हमसे बड़ा स्टार कोई है क्या दुनिया में, कोई स्टार होगा तो 5-10 साल का 20 साल का होगा और कितना होगा, फिर उसके बाद बुढ़ा हो जाने के बाद उनको कौन स्टार बनेगा, लेकिन हम पूरा आधा कल्प तो पूरा विश्व नाटक में हीरो हीरोइन होंगे ही, लेकिन द्वापर युग से भी हमारे यादगार का पूरा सारा फिर कल्प चलता रहेगा, आधा कल्प चलता रहेगा, तो कितने बड़े स्टार हैं हम सोचिए, कितने सफलता की सितारे सोचिए। तो बाबा जो सिद्धांत बताते हैं, बाबा ने कहा खाली जानने से नहीं चलेगा, मानो भी और उसको जीवन में प्रैक्टिकल में आचरण में उतारो उसको, चलो तो ही आपको नशा चढ़ेगा, खुशी होगी। तो बाबा ने दो बताया था सिद्धांत, याद होगा आप सभी चिंतन किया कुछ न कुछ। देखिए एक होता है सुनना, सुनने से खुशी होती है। जब हम द्वापर युग से भी कथा कहानी सुन रहे थे, आज बाबा ने कहा सब झूठ, अभी तक सब जो भी सुना सब झूठ है ना, नहीं अर्जुन ने तीर मार दिया गंगा निकल गई झूठ, कोई गुप्त नदी है झूठ, तो कितनी सारी झूठ कथा है। लक्ष्मीनारायण लाखों वर्ष तक थे झूठ, बाबा ने कहा सुनो नहीं झूठ, ये सब चीजें सत्य तो बाबा एक ही बताता है। तो बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, इसको सुनने से खुशी हो जाते हैं, अरे हम ऐसे सुन रहे ऐसे मानते थे, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, वाह, तो खुशी होती है। कोई नई बात है वो जानते हो, पहले पता नहीं था, जब जानते हैं खुशी होती है। उसको कनरस कहा जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में है मनरस। यहाँ बाबा कितने सुनते सुनाते द्वापर युग से तुम तो आदि हो गए हो, खाली वही सुनते रहते हो सुनाते रहते हो, लेकिन अभी स्वरूप बनो। बाबा की कितनी मुरलियां है, बाबा कहते खाली सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्वरूप बनो, यू हैव टू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ द नॉलेज। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान स्वरूप बनो, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा कहा जाता है। एक है ज्ञानी आत्मा, समझ है सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो करके दिखाता है वो ज्ञानी तू आत्मा है। ऐसे योगी तो हम सभी हैं, लेकिन योग का पूरा पराकाष्ठा अपने जीवन में दिखाई दे तब कहेंगे योगी तू आत्मा। तो बाबा अभी स्वरूप बनना चाहते हैं, हम सभी स्वरूप बने, लोग भी वही देखना चाहते हैं। आप कितने समय योग में बैठते हो लाल लाइट के नीचे, कितने बार मुरली पढ़ते हो, लोगों को कोई मतलब नहीं। हम सभी का चाल चलन बोल व्यवहार आचरण कैसा है वो लोग देखना चाहते हैं। हमारे जीवन का परिवर्तन ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, खाली बोलने से अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो कब से बाबा प्रत्यक्ष हो जाते। कोई ढिंडोरा पिट के भी अभी कुछ समय पहले की सागर मुरली याद होगा, ऐसा मत कहना कभी कि भगवान आ गए हैं, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे आपका, ऐसा भगवान कहलाने वाले बहुत हैं, ऐसा कभी नहीं कहना। तो ज्ञान सुनाने से अगर प्रत्यक्ष हो जाते कब से बाबा प्रत्यक्ष हो जाता नहीं। मुझे याद है वो दिन हमारे जगदीश भाई जी जो हमारे मुख्य प्रवक्ता थे संस्था की, तो लास्ट उनका लास्ट क्लास था मधुबन निवासियों का, मेडिटेशन हॉल में क्लास करा रहे थे। वो कह के गए मेरे भाई और बहनों मैं सारा जीवन लिखने में भाषण करने में बिता दिया, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया नहीं कर पाया नहीं कर पाया। हम सभी मिलकर जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो भगवान हमको जो पढ़ा रहे हैं इसको प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में उतारना पड़ेगा, खाली सुनने सुनाने से नहीं चलेगा, लोग वो देखना नहीं चाहते हैं। हम प्रैक्टिकल जीवन में क्या है, हमारे बोल व्यवहार कैसे, हमारे आचरण कैसे, सबके साथ मिलनसार एक ने, देवी देवताओं जो बताते हैं उनके जीवन की सारी महिमा वो सारा अभी से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि संगम युग रिहर्सल का समय है। कोई रिहर्सल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो स्टेज में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। रिहर्सल में ही डांस करना नहीं आता है और स्टेज में जाके डांस कर लेगा, कैसे करेगा। तो अभी प्रैक्टिकली हमें बनना है वो देखना चाहते हैं सभी दुनिया वाले, सचमुच ऐसे कैसे बन गए, फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं उसको जीवन में आचरण में उतारना है, और उसमें जो प्रैक्टिकल बाबा जो कहते हैं वो किया, बाबा ने कहा और किया आज्ञा कर, वही बाबा के समीप रतन है। बाबा ने कहा पहली पहली श्रीमद, आज बाबा की मुरली याद होगा सभी का प्रश्न में, इन आंखों से जो भी कुछ देख रहे हो भूल जाओ, करते हैं प्रैक्टिकली हम, कितने लोग करते हैं, हम सुन लिया खाली बस। तो खाली सुन लेने से नहीं चलेगा, जो हमारी सिद्धांत है उसको जीवन में आचरण में उतारना, तो ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। खाली ऐसे बोलने से नहीं हो सकता है। तो बाबा के दो सिद्धांत बाबा ने कहा, उदाहरण याद है कि हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर एक है। तो इसका भक्ति में भी देखो, इसका यादगार, हम एक को मानते हैं इसलिए हम सभी एक के हैं, हम एक हैं, हमारी एक रस स्थिति बन जाती है। फिर हम सत्युग जो होगा वहां भी सब एक होके रहेंगे, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, एक जाति, एक वर्ण, सब एक होगा। ये हमारे मूल सिद्धांत है। और द्वापर युग जब आया तभी जो धर्म स्थापक आएंगे वो भी कहेंगे गॉड इज वन, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, वो भी कहना शुरू कर देंगे। हमारे जीवन के सिद्धांत है पवित्रता, बाबा ने कहा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, संपूर्ण पवित्रता, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब सब में पवित्र, संपूर्ण पवित्रता। तो इसमें हम जब पास होते हैं तो अभी भी प्राप्ति होती है, भविष्य में भी प्राप्ति होगी 21 जन्म के लिए, और फिर द्वापर युग से फिर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी देखेंगे, उसका असर भी देखेंगे। तो बाबा जो हमें सिद्धांत बताते हैं ज्ञान में, जो पढ़ाई में, उसको जीवन में आचरण में उतारने से अभी भी प्राप्ति है और 21 जन्म तक अविनाशी प्राप्ति है। फिर द्वापर युग से भी उसका प्राप्ति का प्रभाव भी देखेंगे, हमारे जड़ मूर्ति का यादगार से भी लोग पूजा करके उनसे भी प्राप्ति की अनुभूति करेंगे, क्योंकि हम सिद्धिदाता है, हमारे जड़ मूर्ति भी लोगों को देने लगे। जैसे बाबा ने क्या कहा कि देखो, आप अभी पवित्रता को जीवन में धारण करते हो तो अभी क्या मिलता है हमको, सुख शांति। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो जीवन में सचमुच पवित्र बनते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसका जीवन अभी से ही सुख शांति का अनुभव होता है जीवन में। और भविष्य 21 जन्म तो स्वर्गिक सुख का अनुभव होगा, कोई सुख की, दुख की, अशांति के नाम निशान नहीं हुआ। 21 जन्म भी पवित्रता का ताज होगा, संपूर्ण निर्विकारी जीवन होगा। और द्वापर युग से भी बाबा कहते तुम्हारे जड़ मूर्ति को देखो, याद करेंगे लोग, और मूर्ति को भी पूजा करने के लिए भी जीवन में पवित्रता की धारणा करेंगे भगत लोग सभी। तो पवित्रता का प्रभाव आप देख रहे हो, क्योंकि दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि देते हैं वो अल्पकालीन है। कोई ऐसा करके आपको कोई घड़ी का चेन ये दे देगा, कोई सोने का चेन दे देगा, कितने दिन तक, कब तक चलेगा वो, क्या प्राप्ति है उसने। लेकिन भाग्य भी था बाबा हमें ऐसे सिद्धि बताते हैं, ऐसे सिद्धि देते हैं जो सारा कल्प चलता है, अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसे बाबा ने जो दो कहा, और कुछ चिंतन किया आप सभी ने, क्योंकि बाबा ने कहा है अगर आप सुनते हो खाली तो उससे शक्ति प्राप्ति नहीं होगी, उससे बाबा का खजाना अपना खजाना नहीं होगा। जब तक आप मनन चिंतन नहीं करते हो, बाबा का खजाना अपना खजाना अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, बाबा कहते बार बार। आप देखना साकार मुरली में भी हर 15-20 दिन में जरूर बाबा कहते होंगे विचार सागर मंथन करो, इसका चिंतन करो। हम अधिकतर भाई बहने हम खाली सुनने सुनाने वाले हैं, इससे हमारे अंदर बाबा की शिक्षा के जो आचरण में उतारना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि शक्ति नहीं मिलती है। एकांत में बैठ के उसका अगर गहराई से चिंतन करते हैं, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मुझे याद है मैं बहुत बार हमारी दादियों को, दादी प्रकाशमणि जी जब थी, मैं शुरू शुरू में मधुबन में आया था, 90s की बात बता रहा हूं, तो उन दिनों में मैं पूछता था कि दादी कैसे पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें। हमारे जगदीश भाई जी को भी पूछता था, बड़े भाई बहनों को, सबको पूछता था। दादी का हमेशा एक ही उत्तर था, आप मुरली अच्छी तरह से पढ़ो और बाबा ने क्या कहा आज के लिए होमवर्क क्या दिया है, आज बाबा ने क्या कहा मेरे को करने के लिए जीवन में, एक ही बात को जीवन में उसको करो। टीचर का होमवर्क जो स्टूडेंट करता है वो टीचर का फेवरेट हो जाता है, ऐसे ही बाबा जो कहते हैं जो उसको करता है तो बाबा का वरदान मिलेगा कि नहीं, आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं। लेकिन खाली सुना, सुन लिया, होमवर्क करके नहीं आया, रोज क्लास में आते हैं लेकिन होमवर्क करके नहीं आते हैं, तो टीचर क्या कहेगा, क्या कहेगा? इसलिए रोज मुरली में बाबा हमें जो कहते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में करके आओ। तो कल बाबा ने होमवर्क दिया था कि ऐसे और विचार सागर मंथन करो, आपके सिद्धांत क्या है और उससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो वो प्रैक्टिकल जीवन में हमारा वो आचरण में उतरता है। जैसे गाय खाली खाने लेती है, क्या करती है, फिर उगाड़ती है उसको, फिर दोबारा चबाती है, फिर वो खून बन जाता है, फिर शक्ति मिलती है। इसी प्रकार ज्ञान को हमारी दादी जानकी जी एक बार सुना रही थी कि मुरली के बाद तुरंत आके नाश्ता कर रही थी, तो बाबा आए, देखे, अच्छा नाश्ता करना शुरू हो गया, किसी को ज्ञान सुनाई हो? तब से लेके आज तक दादी के दिमाग कान पकड़ ली, जब तक ज्ञान का चिंतन करके किसी को नहीं सुनाती हूँ मैं नाश्ता नहीं करती। हमारी सभी दादियों को मुरली के बाद बाबा कहते थे जाओ पहाड़ी में एकांत में बैठो, बाबा ने क्या सुनाया, क्या सुने, चिंतन करो, मनन करो। तो हम बाबा के बच्चे अधिकतर हम सुनने सुनाने वाले हैं सिर्फ, इसलिए हम ज्ञान का स्वरूप नहीं बन पाते। फिर हमारे आचरण जैसा होना चाहिए नहीं, हमारी दृष्टि वृत्ति चाल चलन बोल व्यवहार जैसा बाबा चाहते हैं कहां ऐसा है, कहां ऐसे बने, क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उतना अटेंशन नहीं देते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं। हाँ सुन लिया खाली, मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर स्लोगन वरदान सार हो गया, खाली इसको दोहरा दिया तोता जैसा। नहीं, मुझे बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा करना है, अंदर चिंता लग जानी चाहिए। बाबा कहते हैं जिस दिन बाबा ने जो हुमर, जिस दिन की मुरली उस दिन की मुरली में बाबा ने जो कहा मुझे करना है, मुझे करना है, फिर बाबा देखो कितनी दुआएं देते हैं। मैंने देखा है हमारी दादी प्रकाश मुनि जी चार पांच बार मुरली पढ़ती थी सवेरे अमृत वेले के बाद, पहले दिन अगले दिन रात्रि को सोने से पहले एक बार पढ़ती थी मुरली, फिर अमृत वेले चाय पीते समय पढ़ती थी, फिर ओम शांति भवन में क्लास सुनाती थी वही, फिर दोपहर को सोने रेस्ट करते समय भी पढ़ती थी। और सारा दिन मैं कितने बार पार्टियों को लेके आता था, मिलवाता था। दादी आज की मुरली में जो बाबा का महावाक्य है उसी पॉइंट को दोहराती थी और सुनाती थी सबको, उसी पॉइंट को और दूसरा कुछ नहीं। कितने बार देखा हूं मैं। तो हम बाबा की मुरली को अच्छी तरह से सुनते तो हैं, लेकिन उसमें बाबा ने हमको होमवर्क क्या दिया है, जब तक हम नहीं करेंगे खाली वो टेम्पररी खुशी है। जब अभी तो ऐसी परिस्थिति आएगी जो शक्ति स्वरूप नहीं होंगे, सामना ही नहीं कर पाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा, देखना ऐसा हालत खूने नाहक का खेल चलेगा, अभी देखना क्या क्या होगा। ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ होने वाला है अभी। तो जब शक्ति स्वरूप बनेंगे, देखो सक्सेसफुल बनने के लिए पहले नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, फिर पावरफुल बनना पड़ेगा, नॉलेजफुल पावरफुल फिर ब्लिसफुल। जब ज्ञान और योग में शक्ति प्राप्त होगी तो आपका जीवन ब्लिसफुल हो जाएगा, आनंदमय जीवन है, एकदम खुशियां ही खुशियां। फिर एसेंसफुल हो जाएंगे, धारणामूर्त हो जाएंगे, फिर जीवन में सक्सेसफुल बनेंगे। और जब सक्सेसफुल होंगे फिर चीयरफुल हो जाएंगे और पीसफुल हो जाएंगे, फुल ही फुल हो जाएंगे, फ्लावर बन जाएंगे, बाबा के रूहे गुलाब बन जाएंगे सब। तो इसलिए जीवन में सफलता मूर्त बनने के लिए पहले नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, पहले ज्ञान को बाबा क्या कहते हैं वो ज्ञान को जीवन में आचरण में उतारना पड़ेगा, फिर योग शक्ति द्वारा। जीवन में शक्ति जब तक नहीं है हम सुनने के बाद भी उसको जीवन में आचरण में उतार नहीं पाएंगे। बाबा ने कल मुरली में कितनी सुंदर विधि, हम सभी भगवान जीवन में जो द्वापर युग से ढूंढ रहे थे जो नहीं मिले थे अभी मिल गए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर योग में क्यों झुटकाता है, क्यों झुटकाता है? जिसको खुशी होगी उसको नींद आएगी क्या, क्यों झुटकाता है? फिर भगवान मिल गया क्यों झुटका? मुझे याद है बाबा कहते आप सभी साधारण नहीं हो, विश्व के स्टेज पर हो, आपको हर कोई देख रहा है। एक बार चैनल में हमारी महिमा भी करते हैं तो हमारी बुराइयां भी दिखाते हैं। एक बार चैनल में कोई चैनल में चल रहा था, मुझे याद है बहुत दिन पुरानी बात है, पूरा टीवी रिकॉर्ड करके किसी ने लेके गया था, देखो देखो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग चल रहा है, कोई झुटका खा रहा है, कोई कैसा कर रहा है, सब ऐसा सब फोकस करके दिखा रहे थे। कितनी गलत बात है। तो बाबा ने कहा कल, क्यों आपको झुटका आता है? बुद्धि में चिंतन नहीं चलता है, रमणीय ज्ञान है, आप उसको भिन्न भिन्न स्वरूप का समान रूपी सीट नहीं देते हो, पोजीशन में सेट नहीं होते हो, इसलिए अपोजिशन माया करते हो, फिर झुटका खाते हो। तो ज्ञान योग तो हम बाबा के बच्चे सब लगाते हैं, लेकिन कौन क्या करता है पता नहीं। वो आज चुपचाप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, क्या चल रहा है, सोच विचार कौन जानता है। बाबा जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो हम जैसा होना चाहिए, योग में बैठते समय जो एकदम आनंद विभोर हो जाए, गदगद हो जाए, अरे भगवान सन्मुख हम मेरे देख रहे हैं, बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, वो सिहरण हो जाए जीवन, एकदम पूरा गदगद अनुभव हो, एकदम खुशी से, ऐसा अनुभव होता है कभी? एकदम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है? कितने समय होता है? जितने समय बैठते हैं भिन्न भिन्न स्वरूप में एकदम शक्तिशाली स्थिति है। जो अमृत मिलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हाथ उठाओ, कोई नहीं करते? बहुत अच्छी बात है। क्यों रेस्ट करते हैं? योग के बाद, योग से अगर आपको शक्ति मिलती है, ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जाके कुछ करूं अभी जाके एकदम। अगर योग में मजा नहीं आया, जस्ट टाइम पास है, बाबा ने कहा है बैठना है, कब सफेद लाइट होगा रेड लाइट से, फिर ओ मेरा कमर थोड़ा सीधी कर दूं, तो योग कर रहे थे कि माया के साथ युद्ध कर रहे थे? तो योग में जो शक्तिशाली स्थिति अनुभूति होनी चाहिए, बाबा से एकदम शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें आ रही है, मेरी आत्मा में चार्ज हो गई, बिल्कुल एकदम मैं भी पावरफुल हो गया, लाइट हाउस माइट हाउस हो गया, ऐसा अनुभव होता है? नहीं है तो फिर तुम झुटका नींद आएगी। ऐसा होना चाहिए, विधि ठीक नहीं है इसलिए सिद्धि नहीं है। तो जो नॉलेजफुल होगा, पावरफुल होगा, वो जीवन में ब्लिसफुल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा, फिर वो एसेंसफुल हो जाएगा, फिर बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएगा, धारणा मूर्त हो जाएगा, फिर जीवन में वो सक्सेसफुल होगा। तो ये सीक्वेंस है। तो ऐसे ही हम सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं, सफलता के सितारे नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने सिद्धांत बताया था, और भी मैं आप कुछ और सिद्धांत सुनाता हूं, सुनो। हमारा सिद्धांत है प्रातः जागरण, रोज सवेरे उठना, अमृत वेले कुछ भी हो जाए, सारे वर्ल्ड में समान नियम है। नहीं, अमेरिका वाले लेट उठ सकते हैं, उनके टाइम टेबल अलग है, दिनचर्या अलग, ऐसा है क्या? गांव वाले जल्दी उठना चाहिए, शहर वाले लेट उठना, ऐसा है? इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, जैसे प्यूरिटी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, ऐसे बाबा ने अमृत वेला का टाइम भी जो फिक्स किया है, 3:30 वाला, 3:30 सारे वर्ल्ड में सेम टाइम। तो हम अभी इस प्रातः जागरण करते हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम जल्दी उठते हैं इसलिए हेल्दी रहते हैं, और व्यर्थ बातों से हम बच जाते हैं। और 21 जन्म तक देवताएं कब जागते होंगे? 8 बजे। उनके भगत 5 बजे से पूजा शुरू करते हैं, तो उससे पहले जागते हैं, तैयार होते होंगे ना, नहीं तो कैसे पूजा करेंगे? तो पहले बंठन करके पूरा तैयार होके दर्शनीय मूर्त होके होंगे, तो ही तो उनकी पूजा होती। तो बहुत जल्दी ऐसे 2 बजे 1:30 बजे कोई नहीं उठेंगे उधर, लेकिन जल्दी उठेंगे डेफिनेटली। तो देवताओं का जीवन भी बहुत सुंदर, देखो सभी प्रातः जागरण करेंगे, 21 जन्म तक हम सभी ऐसे प्रातः जागरण करेंगे। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो अब तक भी मैं कहूंगा ये 20-30 साल के अंदर ही पूरा हमारी भारतीय संस्कृति ही चेंज हो गई। विदेशियों को नकल करते करते अभी माँ बाप ही 8 बजे उठते हैं, तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? तो पूरा एकदम चेंज हो गया सब कुछ सिनेरियो। तो बाबा हमें जो अमृत वेले का जो सिद्धांत बताए हैं, इसका जो पालन करता है अभी उसका बेनिफिट पाएगा। 21 जन्म तो निरोगी बनेंगे ही हम। आज भी देखिए भारतवर्ष में कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, जो सवेरे जल्दी जागता है वो बुद्धिमान बनता है, धनवान बनता है और स्वास्थ्यवान बनता है। साइंटिस्ट आज प्रूव करके बता रहे हैं कि 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, इस समय जो जागता है उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट भी अभी स्वीकार कर रहे हैं, तो कलयुग अंत तक भी उसकी मान्यता चली आ रही है। और जो कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल जीवन में हो रहे हैं। देखो अब जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, मोदी जी कितने बजे उठते हैं जानते हो? 4 घंटे ही सोते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 4 बजे उठते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, 4 बजे क्रिकेट बैट लेके पहुंच जाता था उसका कोच आने से पहले फील्ड में, इसलिए तो स्टार बन गया, क्रिकेट स्टार बन गए। तो जो भी जीवन में सक्सेस हुए हैं वो प्रातः जागरण के हैं, उठ के त्याग किए हैं और तपस्या किए हैं, मेहनत किए हैं। तपस्या क्या? साधना, लगे रहना एक कार्य में। दृढ़ता संपन्न अभ्यास ही तपस्या है। किसी कार्य में एक दृढ़ता के साथ लगे रहना, जब तक उसके सक्सेस नहीं बनेंगे तब कहते तपस्या। तो हमारी जो प्रातः जागरण की जो सिद्धांत है, देखो हम खुद ही इसका सिद्धि स्वरूप बनते हैं, 21 जन्म उसका सुख पाते हैं और हमारी यादगार द्वापर से भी चलता रहता है ना। नहीं, इसी प्रकार हमारी और सिद्धांत है, सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुनना। ब्राह्मण जीवन का नियम है ना, नहीं कि नहीं चलेगा हफ्ते में एक दिन, जैसे लोग चर्च जाते हैं संडे को संडे, कि शुक्रवार को शुक्रवार मस्जिद जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना। बाबा ने कहा एक दिन भी छुट्टी नहीं तुम्हारा। तो जो हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका फल हमें 21 जन्म तक, इस पढ़ाई का प्राप्ति हम 21 जन्म तक राज्य भाग्य प्राप्त होता है। दुनिया में अच्छा स्टूडेंट कोई होता है तो वो अच्छा पद पाता है और कितना फायदा होता है उसको दुनिया में भी। मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़े पदवी मिलती है, बहुत कुछ उसको प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम 21 जन्म स्वर्गिक सुख पाते हैं, राजाई पद के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सत्संग का कितना गायन है। भक्ति काल में जो सत्संगी होते हैं उनको कितने मान्यता देते हैं। सत्संग, सच्चा संग तो यही है ना हमारा, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, बाकी तो कोई सत्य दुनिया में है नहीं। तो सच्चा सत्संग तो यही है, लेकिन भक्ति काल में भी लोग सत्य को तो जानते नहीं भगवान को, फिर भी जो कहीं जाके पुराण शास्त्र की बातें सुनते हैं तो उसको सत्संग समझते हैं, उसकी मान्यता कितनी है। जो सत्संग करता है जाता है उसको बहुत उसकी मान्यता होती है। तो अभी तक हम देख रहे हैं उसका गायन भी। इसी प्रकार हमारी मान्यता है शुद्ध अन्न, बाबा ने कहा कि कंदा लहसुन खा सकते हो, ये हमारी सिद्धांत है। कुछ भी हो जाए, जान जाए लेकिन हमारे धर्म न जाए, तो हम कि चलता है। आजकल बाबा के बच्चे थोड़ा चला लेते हैं, जैन फूड खाने से चलेगा? वो भी कांदा लहसुन नहीं डालते, चलेगा नहीं चलेगा? क्यों? वो तो कांदा लहसुन नहीं होता उसमें, वो तो आलू भी नहीं होता है, क्यों नहीं चलेगा? हाँ हाँ, वो बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? तो जो बाबा की याद में, बाबा के बच्चे जो जीवन में धारणामूर्त है, पवित्रता को जीवन में अपनाते हैं, वो योगाभ्यास करते हैं, वही बाबा को याद करके बनाकर उसको जब हम बाबा को अर्पण करते हैं तब उसको शुद्ध सात्विक अन्न कहा जाता है। तो इसकी प्राप्ति हमें 21 जन्म तक विष्णु वंशी बनेंगे। सत्युग में हम खाएंगे कोई ऐसी चीजें? अभी भी हम कितने बीमारियों से बच गए। देखो जो बर्गर पिज्जा खाते हैं कैसे हालत है आपको पता नहीं, क्या क्या बीमारियां होती है हम तो देखते हैं ना। अभी थोड़े समय पहले अहमदाबाद से एक जेंटलमैन आए थे, वो बता रहे थे उसका 18 साल का बेटा, उसके आंतड़ी एकदम ब्लॉक होने के कारण उसको सीटी स्कैन कराया, देखा कि आधा मीटर तक कम से कम वो ब्लॉक हो गया है। तो उसको फिर सर्जरी कराया तो देखा कि अंदर पूरा पत्थर जैसा पूरा जमा हो गया था। क्या? वो घर में कभी नहीं खाता था, रोज जाके कहीं पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खाली गंद चीजें खाता था, तो पूरा पत्थर जैसा पूरा होके जाम होके इतना ब्लॉक हो गया था, इतनी आंतड़ी काटना पड़ा और आईसीयू में रहके कितना पैसा खर्च हुआ लेकिन आखिर गया। तो ये सब गंदी चीजें खाके और ही बीमारियां इन्वाइट करो, टेम्पररी जीव का सुख फिर दुख ही दुख। तो बाबा ने हमको कितनी बातों से बचा दिया। दुनिया में तो क्या क्या कर रहे हैं, खिला पिला के किसको मार भी दे रहे हैं। आप आजकल कितना डेंजरस है आपको पता नहीं। एक हमारे हॉस्पिटल का एक भाई, कुछ साल पहले की बात है, वो ट्रेन में अकेले आ रहा था तो ऐसे बातचीत करते हुए दोस्ती हो जाती है, किसी ने पानी का बोतल पीने के लिए बोला, पी लिया, ऐसा सो गया ये आबू रोड स्टेशन जाके 10 घंटे के बाद उसकी नींद खुली। देखा तो उसका लैपटॉप, उसका बैग, उसका सब। तो आजकल कहीं कुछ भी लेना, आजकल मशीन में अटक के नॉन टच टेक्निक से होता है ना, सब बाहर का आइसक्रीम भी खा लेते हैं, क्या क्या खा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सचमुच अगर सेफ रहना चाहते हो तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कहीं नहीं खाना। बाबा जो अन्न दोष से बचने के लिए जो कहते हैं, अगर इसका नियम हम पालन करते हैं, अभी भी फायदा और 21 जन्म तो हमको प्राप्ति है ही। अभी अगर इधर उधर का खाएंगे सतयुग में जाएंगे, जाएंगे बीड़ी कभी कभी पी सकते हैं, बाबा कहते हैं ना कभी कभी। बिल्कुल नहीं, जो नहीं ये फॉलो करेगा सतयुग में जा ही नहीं सकेगा। तो 21 जन्म तो हमें मिलेगा ही, लेकिन द्वापर युग से भी देखो, हमारे मंदिरों में आज तक भी जड़ मूर्तियों के सामने, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में गंद चीजें जाके प्रसाद दिया जाता है। आज तक जो सच्चे भगत अपने को वैष्णव कहलाने वाले, देखो कितना उसकी मान्यता अभी तक भी देख रहे हो। तो ये हमारा सिद्धांत है, आप देख रहे हो उसका सिद्धि। इसी प्रकार और क्या सिद्धांत है हमारे, अहिंसा। बाबा कहते हैं तुम अभी जीवन में अहिंसा, काम कटारी भी नहीं चलाना है, क्रोध भी नहीं, ये तुम्हारा सिद्धांत है। इसलिए देवताएं डबल अहिंसक बनते हैं। और द्वापर युग से भी देखो, द्वापर युग से भी मंदिरों में जाके सब बाद में सब भक्ति तमो प्रधान होने के कारण फिर बलि चढ़ाना ये सब करना शुरू किए, लेकिन जो सच्चे भगत होते हैं वो भी बुद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म में अहिंसा मूल नीति है, अभी तक भी मान्यता आप देख रहे हो। इसी प्रकार और क्या है, और क्या हमारे सिद्धांत है, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करो, सफल करो, अपना सफलता मुहूर्त बनना है, सक्सेसफुल जीवन में बनना है तो सफल करो, सफलता मिलेगी। हम सेवा में सब कुछ लगाते हैं, बाबा अभी भी देते हैं। मुझे याद है हमारे जो पीस ऑफ माइंड जो चलाते हैं रवि भाई जी, वो अपना अनुभव एक बार सुना रहे थे। वो सिंपल एक बिजनेसमैन है, लेकिन बाबा के बने तो कहते थे कि मैं 100 बाबा के 1000 रुपया अगर बाबा की सेवा में लगाता हूं मेरा लाख इनकम हो जाता है, मैं लाख लगा दू मेरा करोड़ों। अभी एक चैनल खुद अकेले चला रहे हैं, सोचो तो सही, कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा की सेवा में अभी भी हम सफल करते हैं तो बाबा 1000 गुना अभी भी देते हैं, और सतयुग में तो सोने का महल होंगे। सोच लो कितनी प्राप्तियां है। तो सफल करो तो सफलता मुहूर्त 21 जन्म सिद्धि मिलेगी। और फिर द्वापर युग से भी हमारे जड़ मूर्तियों को भी कितने सोने में, खुद पहनेंगे नहीं लेकिन मूर्तियों को सजाएंगे, द्वापर युग से भी कितनी मान्यता है सोचो। इसलिए दान पुण्य का महत्व द्वापर युग से भी देखते हैं, जो सच्चे भगत होते हैं दान पुण्य करते रहते हैं, देख रहे हो भगवान के लिए मैं सफल कर रहा हूं, अभी तक मान्यता आप देख रहे हो, सेवा का महत्व आप देख रहे हो। इसी प्रकार और क्या मान्यता है, यहां हम भाई भाई की दृष्टि, बाबा कहते हैं तुम जिसको देखते हो ये आत्मा है, भाई है, हम सभी ये विश्व परिवार है, हम एक बाबा के बच्चे हैं, ये तुम्हारा सिद्धांत है। इसलिए सतयुग में भी क्या होता है, एक परिवार हो जाता है, एक धर्म, एक भाषा, एक सब, एक सब एक हो जाता है, और परिवार की तरह हम सभी रहते हैं, राजा प्रजा, कोई भले वहां स्टेटस अलग होगा लेकिन कोई ऐसे वहां कोई नौकर नौकर नहीं समझेगा, चाकर चाकर दास दास नहीं समझेगा, वहां परिवार जैसा वासना होगी सभी, बाबा कहते हैं। और द्वापर के बाद भी ये मान्यता है, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और अभी तक भी वो मान्यता है। आप गुजरात जाओ देखो, अभी तक भी सतयुग का कुछ कुछ देखते हो, देखो रास अभी तक भी करते हैं, है ना, नहीं अभी तक भी देखना, गुजरात कहीं भी जाओ वहां सभी जो भाई होंगे उनका नाम भाई लिखेंगे, हसमुख भाई, फलाना भाई, और बहन बहन बहन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी उसके आपका हस्बैंड का नाम क्या कहेंगे तो वो भाई बोल के कहेगा कहेगी, ठीक है ना, नहीं तो वो बहन बोल के कहे। अभी तक भी देखो भाई बहन, जो हमारे सिद्धांत है अभी तक आप यादगार देख रहे हो। हमारा यादगार है, हमारा सिद्धांत है एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिवा दूसरा न कोई, जिसके कारण आप देख रहे हो सतयुग में त्रेता युग में हमारे राज्य में कोई आके हमें कुछ नहीं कर सकता है। बाबा हमारा सहारा है, छत्र छाया है। हमें इसलिए निर्भय हो गए सभी, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सत्ययुग त्रेतायुग में भी बाबा कहते तुम्हारे अटल अचल राज्य भाग्य होगा, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। और द्वापर युग से भी मान्यता है, जो सच्चे भगत होते हैं कहेंगे जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, भगवान को जानते नहीं तो भी अंदर विश्वास है, अटल विश्वास है। द्वापर युग से भी मान्यता है, जिसको राखे साई मार न सके कोई, वो साई कौन है जानते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे विश्वास है, मान्यता देख रहे हो। हमारी यहां सिद्धांत है सत्यता, तो इसलिए बाबा सत्य ज्ञान देके अभी हमारे जीवन जो सच होंगे, बाबा कहते सच तो बिठो नच, अभी जीवन में खुशी हर्षित मुक्ता आप सभी यहां से देखोगे, उनके जीवन में रियलिटी है, रियलिटी की रॉयल्टी देख सकते हो उनके जीवन में। और सत्ययुग त्रेतायुग में तो हम सभी सत्य बाबा सत्य ज्ञान सुनाकर सत्ययुग स्थापन करते हैं, सत्य नारायण बनाते हैं, 21 जन्म मालामाल रहेंगे। और द्वापर युग से भी उसकी मान्यता आप देख रहे हो, कहेंगे सच तो बिठो नच, सच की नया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सत्यत्व की मान्यता द्वापर युग से भी। तो अनेक सिद्धांत है, इसको हम प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाएं। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, इसका स्वरूप बनो, अभी खाली सुनने तक नहीं स्वरूप बनो, तो प्रैक्टिकल तुमको सिद्धि भी मिलेगी, द्वापर युग से तुम्हारी जड़ मूर्तियों से भी सिद्धि लोगों को मिलेगी। समझ में आया, द्वापर युग से हमारी जड़ मूर्तियों से लोगों को सिद्धि मिलेगी, हमारी जड़ मूर्तियों से किसी को सत्यता की शक्ति मिलेगी, अहिंसा जीवन में पालन करने की शक्ति मिलेगी, शुद्ध अन्न खाने की शक्ति मिलेगी, उनको हमारी जो धारणाएं हैं उसको शक्ति उनको मिलेगी। इसलिए बाबा कहते आप सभी विधि विधाता भी हो और सिद्धिदाता भी हो। मैं तुमको विधि बताता हूं और जीवन में तुम जीवन में आचरण में उतारो, दूसरों को सिखाओ, विधि बताओ और खुद सिद्धि का अनुभव करो और दूसरों को अनुभव कराओ। कल का मुरली का सार यही था, है ना? नहीं तो प्रैक्टिकल जीवन में हम उसको आचरण में होता है, जो करेगा सो पाएगा, खाली सुनने तक नहीं, हम सुनने तक खुश हो जाते हैं सुन के, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं, नहीं। अभी समय आया है, बाबा ने कहा द्वापर युग से कितने जन्म जन्मांतर सुनते सुनाते आए हो, अभी प्रैक्टिकल एक एक जीवन में एक एक चीज को भी बाबा की शिक्षा को अगर जीवन में अनुकरण करेंगे तो ही तो बाप समान संपन्न संपूर्ण बनेंगे, कब बनेंगे नहीं तो। अभी अंतिम समय आ गया है, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, और कोई नया बाबा ज्ञान दे रहे हैं क्या, उसको रिविजन ही कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम सामने है तो अभी प्रैक्टिकली बनना है। अभी हमारी पढ़ाई का सारा प्रैक्टिकल पेपर है, यहाँ कोई थ्योरी फोरी नहीं है, प्रैक्टिकल, जो बनेगा वही चमकेगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली, हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्य का सितारा चमके इसलिए हम स्वरूप बने। तो सिद्धिदाता को पहचान लिया, अभी सिद्धांत को पहचाने अच्छी तरह से और उसको जीवन में आचरण करके सिद्धि स्वरूप बने और दूसरों को भी बनाए, यही बाबा हमें कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।